Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अरे हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत में भी तो परमात्मा का दर्शन करना चाहिए. हाथी में तुमने परमात्मा का दर्शन किया, लेकिन महावत की बात में तुमने क्यों नहीं माना? तब उसे समझ में आया कि बात तो सही है, ये दर्शन करने का तरीका ऐसा मत रखो जहां लाभ हो वहां दर्शन करो और जहां नुकसान हो बोले यहां हमें भगवान नहीं दिखाई देते, ऐसा तो नहीं चलेगा. अब ये नागाओं की फौज तैयार हो गई, इसके बहुत सारे मढ़ी हैं, मठ हैं, इसमें फिर कोतवाल होते हैं, पंच होते हैं, पंच परमेश्वर बोलते हैं इनको, और ये सब हमारे स्नान में जो अभी शाही स्नान होता है कुंभ में हमारी फौज बनकर के चलते हैं कि कोई बीच में विघ्न न डाले. और आज भी किसी मठ आश्रम में कोई खतरा हो, इन्हीं नागाओं को बुला करके हम अपने संपत्ति को बचाते हैं कि कोई लोग इसका दुरुपयोग न करे. धीरे धीरे शंकराचार्य जी लोग शाही स्नान करते थे, बाद में बोले शंकराचार्य केवल ब्राह्मण बनेंगे, अन्य जाति वाले को नहीं आने देंगे. हाथी पे बैठ के स्नान करने जा रहे थे नागाओं के लिए, उन्होंने कुछ ऐसा अपशब्द बोल दिया, नागा लोग नाराज हो गए, बोले हम इनको नहीं मानते, बहिष्कार करो, इनको हम नहीं नहलाएंगे. तब हुआ कि जो मंडली का स्वामी बने वो मंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर परंपरा शुरू हुई. मंडलेश्वर परंपरा में 7 अखाड़े और 10 नामी सन्यासी. 10 नामी में न 9 नाम आएंगे न 11 नाम आएंगे, 10 नाम एकदम प्रसिद्ध है. तो 10 नामी में जो है तीर्थाश्रम बनारण्य, गिरी पर्वत सागरा और सरस्वती भारती च पुरी नामा समुच्यते. ये 10 नाम जो है नदी पर्वत जंगल इन सब के आधार पर हम लोगों का सरनेम है. जिसमें अरण्य लगा हो तो समझ लेते थे कि ये जंगल में रहने वाले हैं, अर्थात अरण्य में एकांत में रहकर के भजन करने वाले हैं. गिरी जिसका नाम है तो गुफा आदि में रहकर के ये भजन करते हैं. पर्वत वाले पहाड़ में रहते हैं. पूरी जो है अपने शरीर को नवद्वारे पूरे देही इसी को माध्यम बनाकर के उपासना करते हैं. सरस्वती भगवती सरस्वती की उपासना करने वाले. तो ये तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागरा सागर समुद्र के तट पर रहने वाले और सरस्वती भारती च पुरी नामा, ये 10 नाम हो गया. 10 नाम सन्यासी हुए और इसके 7 अखाड़े हुए. सबसे पुराना अखाड़ा होने के कारण आज भी गुजराती में क्या बोलते हैं, जूना छे जूना, वही जूना अखाड़ा है. और जूना जो शब्द है अपभ्रंश है, ये संस्कृत का शब्द है जीर्ण, जीर्ण से बना जूर्ण और जूर्ण से बन गया जूना. और अखाड़ा जो नाम पड़ा, अभी कौन सा महीना चल रहा है, बैसाख, फिर क्या आएगा जेठ, जेठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ में वो पेट कटा हुआ अखाड़, पेट कटे को खवी तो बोलते हैं. और आषाढ़ शब्द जो बनता है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से सहमर्षणे, सहन करना. अब कितनी बड़ी बात है, एक अखाड़े में पहलवान लड़ता है वो अखाड़ा अलग है, और यहां जो प्रेमपुरी में हम लोग लड़ रहे हैं ये अखाड़ा अलग है. वहां के पहलवान को शारीरिक बल चाहिए, यहां के पहलवान को क्या चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए. यहां पर भी 6 चीजों का नाम तो बार बार बोलते हो ना, अधिकारी, अधिकारी की जब बात आती सबके रटे रटाया है, क्या क्या है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान. इसका परिणाम क्या है, ज्ञान तो होगा बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ये जो 6 चीजें जिसमें आती है तो 6 चीजों की प्राप्ति पहले हो जाती है. सम का मतलब क्या होता है, मन का संयम, मनोनिग्रह समह और इंद्रिय निग्रह दम, सम दम उपरति। अब देखिए दम और उपरति को एक साथ करिए। दम के द्वारा अवैध कर्मों से निवृत्ति होती है। शास्त्र ने जिसका विधान नहीं किया ऐसे निषिद्ध कर्मों से बचने के लिए दमन होना जरूरी है। लोग समझते कि बस ऐसे इंद्रिय के दमन कैसे करेंगे, रूप आएगा तो देखना ही पड़ेगा, क्या आंख बंद करके बैठे, ऐसा नहीं है। वहां पर अवैध कर्म से निवृत्त होने के लिए दमन करना है, जिसका निषेध किया गया उसको हमें नहीं करना है। और जब अवैध कर्म से निवृत्ति होगी तो फिर वैध कर्म से अपने आप उपरत होने लगता है। इसलिए उपरति के द्वारा वैध कर्मों से निवृत्त होने के लिए उपरति का होना जरूरी है। कई बार होता है शास्त्र ने निषेध किया वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो करने के लिए कहा वो तो करें, लेकिन उससे भी ऊपर उठना है, क्योंकि अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो पहले तो अवैध कर्म से निवृत्त होने के लिए दमन चाहिए और वैध कर्म से भी निवृत्त होने के लिए उपरति की आवश्यकता है। तो दम उपरति ऐसा जोड़ दो। अब क्या है, पहले तो सम है, सम के द्वारा क्या करना है तो अवैध वृत्ति का निग्रह करना है। समन जो होगा वृत्ति तो बनेगी, लेकिन हमें अवैध वृत्ति जिसका विधान नहीं किया शास्त्र ने, राग और द्वेष जो होते ना, राग द्वेष को हटाने की बात तो की जाती है, लेकिन राग द्वेष हमारे अंदर आए कहां से? राग द्वेष हमारे अपनी वासना से, अपने संस्कार से, अपने परिवार के वातावरण से स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। इसको हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप आया हुआ है, अंदर पहले से बैठा है। कैसे इसको हटाएंगे? इसके लिए अवैध वृत्ति न बने, इसके लिए सम की आवश्यकता है। और वैध वृत्ति बनाने पर भी विक्षेप होता है, इसलिए वैध वृत्ति से विक्षेप को निवृत्त करने के लिए क्या चाहिए तो समाधान की आवश्यकता है। समाधान करो तो दम उपरति और सम और समाधान ऐसे जोड़ो, तब जाकर के रट लेने से नहीं काम चलेगा ना, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। सम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा, समाधान तो आ गया ना उधर, दम उपरति सम समाधान, अब दो बचे तितिक्षा और श्रद्धा। तितिक्षा के द्वारा देहाशक्ति का भाव निवृत्त होता है। तितिक्षा करो, सहन करो, जान बुझ करके तो हम कोई कष्ट नहीं उठाएंगे, लेकिन जो कष्ट आ जाएगा प्रारब्ध से उसको सहन करना है। प्राय दिन भर हम लोग यही प्रयास करते हैं, कोई कष्ट ना आए, आता भी है, भोगना ही पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण ले लो, कार में बैठे हो, एसी में चल रहे हो और ऐसी जगह में टायर पंचर हो जाए जहां आपको कोई सहारा देने वाला नहीं, गाड़ी से उतरोगे कि नहीं उतरोगे? स्टेपनी लगानी पड़ेगी, धूप पड़ रही कड़ाके की, गाड़ी बंद है, पसीना पसीना से लथपथ हो रहे हो, इसको प्रारब्ध नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? अपनी तरह से तो सुख सुविधा पूर्वक चल रहे थे, लेकिन बीच में आ गया, अब वहां हाय तोबा नहीं बचाना है, आया पसीना आया, गाड़ी पंचर हो, ठीक करो, आगे चलो, फिर नहा धो लो, लेकिन अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, कंपनी वाले को गाली दे रहे, कैसा टायर बनाते हैं, यही इसको पंचर होना था, ये सब जो हाय तोबा मचाते। तो देहाशक्ति का जो भाव है, देह में आसक्ति का भाव, इसकी निवृत्ति होती है तितिक्षा करने वाले। इसलिए तितिक्षा का नाम ही है, आजकल जो भाषा चली थी टॉलरेंस और इनटॉलरेंस, ये क्या किसी को पता ही नहीं था अभी तक, और आज भी इनको पता नहीं है। सहिष्णुता, सहन करने का जो एक भाव है, इसी को तितिक्षा बोलते हैं। तितिक्षा में निवृत्ति का भाव दृढ़ होता है, जबकि तपस्या में प्रवृत्ति का भाव दृढ़ होता है। कुंभ में देख ही रहे आप, कोई एक पैर पे खड़े हैं, कोई आग जला के सिर पे लेके धूप में बैठे हुए हैं, ये सब प्रवृत्ति वाले बात है, तपस्या। और तितिक्षा में जैसा है जहां है, गर्मी है, भोजन बनाना है तो भट्टी के पास बैठना पड़ेगा, वो तप तो नहीं है, तितिक्षा में ही आ जाएगा, क्योंकि भोजन करना है, आगे वेदांत पढ़ना है, बिना चूल्हा के पास बैठे बिना भोजन तो बनेगा नहीं। लेकिन उद्देश्य यह है कि जैसे भोजन हो जाएगा थोड़ा आराम करेंगे फिर वेदांत पढ़ेंगे, वो तितिक्षा में आएगा। तो तितिक्षा में निवृत्ति का भाव दृढ़ होता है, तपस्या में प्रवृत्ति का भाव दृढ़ होता है। तितिक्षा में अकर्तृत्व भाव दृढ़ होगा, प्रवृत्ति का भाव नहीं रहता, और तपस्या में कर्तृत्व भाव दृढ़ होता है, मैं करता हूं, मेरे अंदर इतने तप करने की क्षमता है। कई लोग शिवरात्रि में एक एक आसन में रात्रि भर बैठते हैं और दूसरे दिन स्लिप डिस्क हो जाए, क्या फायदा ऐसे आसन में बैठने की, कोई बैठ सकता उनको बैठने दो, हम नहीं बैठ सकते, क्यों ऐसी नकल करनी है, वाह 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 वाह, अरे रात भर एक ही आसन में गजब हो गया। कभी ऐसी नकल मत करना, जैसे अपना शरीर साथ दे, यदि आप कुर्सी में बैठ के माला जप सकते हो आराम से तो कुर्सी में ही बैठो, जमीन पे जबरदस्ती बैठोगे उठते समय कहीं चमक हो गया क्या करें महाराज, हम कई लोग हैं नियम वाले बड़े, हमको तो जमीन पे ही बैठना है, कुर्सी पे नहीं बैठना है, कुछ बोलते हैं हमें कुर्सी पे ही बैठना है, जमीन पे नहीं बैठना है, शरीर जैसा साथ दे वैसा करना है। देहाशक्ति के भाव को निवृत्त करने के लिए ही तितिक्षा में जाना पड़ता है, और श्रद्धा के द्वारा जो है सबसे बड़ी बात है अहम का भाव जो है दूर हो जाता है। ये अहमता रूपी जो दोष है अभिमान, अभिमान की निवृत्ति के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। अब जब कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, बोलते क्यों जी हमारे तो कोई श्रद्धा ही नहीं होती, क्या करूं, लेकिन हमने अपने मां बाप को मां बाप जो माना है, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से माना है कि श्रद्धा पे माना है, जन्म होते ही हॉस्पिटल से कोई उठा के गायब कर दे बच्चे को, और उस बच्चे को जो ले गया उठा के वो कहे मैं ही तेरे मां मैं ही तेरा बाप, मानेगा कि नहीं मानेगा, उसको क्या पता है हमको हॉस्पिटल से उठा लिया है, हमारे मां बाप और कोई थे, तो वहां जो बताते हैं उसी में हम श्रद्धा करके मानते हैं, वहां तर्क नहीं कर सकते कि मैंने तो मां के पेट से अपने को निकलते हुए देखा नहीं, मैं कैसे मानूंगी तू ही मेरी मां है, वहां पर श्रद्धा ही सबसे मूल कारण है। फिर वेदांत पढ़ने के लिए क्यों आप बोलते हो श्रद्धा नहीं हो पा रही है, मान लो ऐसे लाइन खींचा उसमें से गोल कर दिया, इधर एक नाक निकाल दिया, क नाम पड़ गया, सबने क माना, हमने भी क मान लिया, आपको होने मैं इसको ख कहूंगा, ख को मैं क कहूंगा, मेरे से नहीं होता है, मेरे मन में श्रद्धा ही नहीं है, इससे अपना पतन होगा, अपना कल्याण नहीं होगा। आजकल बड़े तर्क करते हैं लोग, ये एक तो क्यों वो क्यों, तो मां बाप क्यों, मानना ही पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां श्रद्धा करने से ही अपना कल्याण होता है। इस तरह से अभिमान की निवृत्ति के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। अब इस षट संपत्ति का मुख्य क्या प्रयोजन है आप लोगों ने समझ लिया, याद रहेगा, बस मोटी मोटी बात है, इसके तो गहरी व्याख्या ज्यादा नहीं करनी है, समय आएगा तो भी देख लेंगे, लेकिन सामान मोटा मोटा तो याद रखे कि दमन क्या है, शमन क्या है, उपरति क्या है, नहीं तो कई बार लोग बोलते उपरति का अर्थ कुछ और ही कर देते हैं, उप मतलब समीप, रति मतलब प्रेम, समीपता से जो प्रेम करे उसका नाम उपरति, ये सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि समीप में रह करके परमात्मा से जो प्रेम करेगा वही फिर वैध कर्मों से भी छूटता चला जाएगा, ये तो हो सकता है, यदि क्योंकि वो गीता के बारे में अध्याय पाठ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, श्रेयो ही ज्ञान मभ्यासाद, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस, और त्यागात् शांति अंतरम, भगवान के शरणागत हो गए सबका त्याग हो गया, और नहीं है तो उससे पहले जो जो कर्म है वो करो, सब कुछ छोड़ के आप करते क्या हो फिर दिन भर में, ये वाली बात है, करो तो फिर अच्छे काम करो, नहीं करो तो भगवान का भजन करो, खाली दिमाग शैतान का घर न बन पाए इससे हमें जरूर बचना पड़ेगा। आचार्य शंकर ये सब मुझे लगता है आत्मबोध तत्वबोध प्रारंभिक ग्रंथों में अधिकारी का लक्षण आता है। विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम अनुबंधम बिना ग्रंथे मंगलम नैव शस्यते। मंगलाचरण तो बहुत बाद में करना होता है, मंगलाचरण से पहले इन सब की आवश्यकता है। विषय क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, इसको अच्छी तरह से गांठ जो बांध लेते हैं वही फिर व्यक्ति जो है आत्मकल्याण के मार्ग में चल पड़ते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जहां पर बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय चलता है। तीन वर्ष ऊपर ही यहां शंकरानंदी दीपिका जो है के ऊपर स्वाध्याय चला, लगभग चार साल। अभी पंचदशी प्रारंभ हो गई, उससे गीता से पहले क्या था, उपनिषदों का हो गया, तो ब्रह्मसूत्र भी हुआ, वेदांत परिभाषा, वेदांत सार, बात वही है घुमा फिरा करके, लेकिन अपने आत्मकल्याण की बात जब करते हैं, कैसे भी अपना कल्याण कैसे हो और साथ में उस ज्ञान से दूसरे को भी लाभ मिले। बाकी प्रारब्ध के अनुसार सबका दिखेगा, लोगों को भ्रम होता है किस बात के ज्ञानी, हमारी तरह रहते हमारे तरह खाते पीते हैं, क्या अंतर हुआ, लेकिन जो आत्मानंद है, आत्मिक जो शांति है, ये विलक्षण है, इसका अनुभव वही करेगा जिसको ये ज्ञान होगा। नहीं तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप पढ़ रहे तो आप ही को मालूम पड़ेगा ना, आप श्रवण कर रहे हैं, जो नहीं करते उनको आश्चर्य होता है ये कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा जो मुंडकोपनिषद में कह दिया है गुरुम एव अभिगच्छेत, अब गुरु ऐसे होते हैं। आचार्य के एक स्तोत्र संग्रह है जिसका नाम है शतश्लोकी, एक श्लोकी, दश श्लोकी, पंच श्लोकी, ऐसे है शतश्लोकी। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरुर् ज्ञान दातु। गुरु की जो विशेषता है, ऐसे तो गुरु के बहुत सारे लक्षण किया, गुकारस्तु अंधकार, रुकार जो है प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए, उनको क्या बोलते हैं गुरु। अब वो अंधेरा कहां है, प्रकाश किधर मिलेगा। सामान्यतया गुरु का जो दोष अर्थ है इतना ध्यान में रखिए, गुरु शब्द जो बनता है ना संस्कृत व्याकरण में एक धातु है ग्री निगरणे और ग्री शब्दे, ये दो धातु है। शब्द मतलब जो उपदेश देवे उनको बोलते गुरु, और जो अपने शिष्य के दोष को त्रुटि को निगल लेवे उनको बोलते गुरु। हाँ, गुरु ऐसे मिलना चाहिए, कैसे, जैसे माँ बाप अपने संतान के अवगुण निगलते कि नहीं निगलते, बाहर ढिंढोरा पीटे हुए लोग क्या कहें, कैसे अपने बच्चे के बारे में बुराई करता है। जो गुरु कहेंगे मेरा चेला नालायक है तो लोग कहेंगे चेला तो आप ही का है, बहुत मुश्किल है। एक आदमी आया पानी पीने के लिए, कहीं से चलते फिरते आया हुआ लाला जी के दुकान के पास अटक गया, लाला जी एक गिलास पानी चाहिए, देख रहे कैसे कोई आया भिखारी फक्कड़, अरे अभी कोई आदमी नहीं है, अब फोन पे बात में लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज देता है लाला जी पानी पिला दो, अरे कह दिया ना यहां कोई आदमी नहीं है, उससे रहा नहीं गया, बोलता लाला जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। समझ में आ गया, वो आदमी तो नहीं है, आप ही तो आदमी हो, अपने को आदमी से अलग क्यों मानते हो। तो बात ही हो जाती घुमा फिरा के। हम जब बोलते हैं कि अपने बच्चे के बारे में जैसे छिपाते, जैसे गुरु भी शिष्य के त्रुटि को, ये जो दोष आदि होते उसको जो अपने अंदर पी लेवे, तो दो धातु से ये शब्द बनता है गुरु, ग्री निगरणे और ग्री शब्दे। ऐसे गुरु के रूप में आचार्य ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया, आज उन्हीं के परंपरा के अनुसार अद्वैत मत का और आचार्य की बड़ी मर्यादा, किसी के मत का जो खंडन किया है, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी है। और ये हम लोग भी चाहते हैं, अपने मत को बताने के लिए पूर्व पक्ष को जानना, खंडन करना तो ठीक है, इसके लिए अपना आपा नहीं खोना चाहिए। ये हमें आचार्य से मर्यादा सीखने को मिलती है। उनके बारे में जितना भी बोला जाए, आप लोगों को जानकारी चाहिए, शंकर दिग्विजय पढ़ लेना, उनकी पूरी जीवनी है उसमें, आचार्य जी के अवतार से लेकर के और लीला संवरण तक 32 वर्षों की आयु में उन्होंने क्या क्या किया, पूरी जानकारी आपको शंकर दिग्विजय पढ़ करके मिल जाएगी। आज आचार्य की जयंती है, अवतार दिवस है, इस उपलक्ष्य में जितना बन पड़ा उनको हम लोग अपने हार्दिक मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समय हो चुका है तो इसलिए अंतिम में सब लोग मिलकर साधन पंचक का पाठ करते हैं, फिर कथा की विश्रांति होगी। पेज नंबर 148। साधन पंचकम वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापौघ परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम् विनिर्गम्यताम संगः सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम शान्त्यादि परिचीयताम दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम सद्विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यताम श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरा पक्ष समा श्रीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयता ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम अहरः गर्वः परित्यज्यताम देहेऽहं मतिरुज्यताम बुधजनैर् बादः परित्यज्यताम क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम स्वाद्वन्नं न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम शीतोष्णादिविसह्यताम न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम औदासीन्यमभीप्स्यताम जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम एकान्ते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम् चितिबलात् नाप्युत्तरै श्लिष्यताम् प्रारब्धम् त्विह भुज्यताम् अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम् यः श्लोक पञ्चकमिदम् पठते मनुष्य सञ्चिन्तयत्यनुदिनम् स्थिरतामुपेत्य कस्याशु संसृतिदवानलति व्रघोर तापः प्रशान्तिमुपयाति चिति प्रसादात् तापः प्रशान्तिमुपयाति चिति प्रसादात् श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितम् साधन पञ्चकम्। ये आचार्य जी को हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हुए पाक पुष्पाजलि अर्पित करते हैं। हरिओम।